तो चूंकि अपनी वालदा को बचपन से इस तरह रोते देखा तो दिल में एक तमन्ना थी कि मैं भी हज करूँ। चुनाचे हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक मरतबा में खूब रोया। मैंने कहा कि हजरत मेरे बड़े दिल की आरजू है, तमन्ना है कि मैं हज करूँ, मगर कुछ ऐसे असबाब नहीं बन रहे कि मैं हज पे जाऊँ, आप मेरे लिए दुआ करें। अच्छा, मैं हाँ रो रहा था, टप टप आंसू गिर रहे थे और हजरत मुर्शिद आलम मुस्करा रहे थे। मैं बड़ा हैरान कि भाई मैं रो रहा हूँ और हजरत मुझे देखते कि मुस्करा रहे हैं। अब समझ में बात आती है कि उनकी निगाह दूर देख रही थी, वो समझ रहे थे कि ये अब इतना रो रहा है और एक वक्त आएगा कि अल्लाह इसके लिए अपने घर के दरवाजे खोल देंगे। चुनाचे सबब उसका ये बना कि उस जमाने में यहाँ फैक्ट्री में मेरी नौकरी थी, मैं चीफ इंजीनियर था, तो बहुत सारा बोनस मिला, पैसे बहुत सारे मिले। तो मैंने अपने दिल में सोचा कि ये तो पैसे इतने हैं कि मैं हज आराम से कर सकता हूँ। फिर दिल में ख्याल आया कि बजाय इसके कि मैं हज करूँ, मैं ये पैसे अपनी हजरत को पेश करता हूँ कि वो मेरी तरफ से हज करें। चुनाचे काफ़ी सारे पैसे थे, मैं लेके चकवाल हाजिर हुआ। मैंने हजरत की खिदमत में अर्ज़ किया कि हजरत आपको तो हर साल पांच पांच छः छः जगहों से हज की टिकटें आती हैं, अगर इस दफ़ा आपने ऊपर एहसान फरमाएं तो ये पैसे कबूल कर लें और इसकी टिकट खरीद के यहीं से हज करें। हजरत मुस्कराए और हजरत ने वो हदिया कबूल कर लिया और मुझे ही फरमाया कि फ्रांस और इंग्लैंड वालों को बता दो कि मैं उनकी टिकट पे हज नहीं करूँगा, मैं सीधा पाकिस्तान के हज पे जाऊँगा। तो ख़तों के जवाब भी चूँकि मैं ही लिखता था तो मैंने उनको ख़त लिख दिया। अब जब मैं हजरत से रुख्सत होने लगा ना, दूसरे दिन दफ्तर जाना था, तो हजरत की खिदमत में मिलने के लिए गया। हजरत मुझे इजाज़त दें, मैंने वापस जाना है, तो हजरत ने हाथ पकड़ के बिठा लिया और मैं मुझे तो हज के लिए तुमने इतना हदिया दे दिया, खुद हज पे क्यों नहीं जाते। मैंने कहा हजरत मैं भी प्रोग्राम बना लेता हूँ हज पे जाने का, मगर दिल मुझे कह रहा था कि पीछे पैसे तो हैं नहीं, बैंक अकाउंट तो जीरो है, तो हज कैसे करूँगा। मैंने कह दिया ठीक है हजरत, मैंने भी इरादा कर लिया। हजरत सवाल लगे ठीक है, अपना वीज़ा लगवाओ और टिकट बनवाओ और तुम भी मेरे साथ हज पे चलो। मैंने भी इरादा कर लिया, मैं घर आया, मैंने घर आके अपनी वालदा को बताया कि अम्मी इस तरह मेरा हज का इरादा बन गया है, हजरत ने फरमाया तुम भी मेरे साथ हज पे चलो। पैसे तो नहीं है मेरे पास लेकिन मैंने इरादा कर लिया है। तो अम्मी ने कहा कि बेटा दिल तो मेरा भी बड़ा चाहता है कि मैं भी हज करूँ, अल्लाह सबब बनाएगा। तो मैंने जब देखा कि मेरी वालदा की भी तमन्ना है हज करने की, मैंने कहा अम्मी आप भी तैयारी करें, मैं आपको भी ले जाऊंगा, यकन शुद्ध दो शुद्ध, अब हम दो हो गए हज करने वाले। शाम को मेरे बड़े भाई आए जो मेरे उस्ताद भी थे, मेरे मोहसिन भी थे, मेरे मुरब्बी भी थे, उनको अम्मी ने बताया। तो उन्होंने अम्मी को कहा कि दिल तो मेरा भी बड़ा चाहता है हज पे जाऊं मगर वसाइल नहीं है। तो अम्मी ने मुझे बताया कि तेरे भाई की तमन्ना भी है कि वो भी हज पे जाए। मैंने कहा अम्मी उनको भी को तैयारी करें, तीनों को मैं हज पे लेके जाऊंगा। अब हम घर के तीन बंदे हज के लिए तैयार हो गए। एक तो होती है हज की तरतीब के कंपनी को पैसे दो और वहां से जाओ। उस जमाने में तरतीब यह थी के वीज़ा लगवाते थे और टिकट बनवाते थे और हज पे जाते थे, वहाँ जाके ग्रुप बनते थे। अब इरादे तो हमने कर लिए लेकिन हमें हज का वीज़ा लेना था। वीज़ा लेने के लिए एनओसी लेना पड़ता था और ये एनओसी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर में जो सेक्रेटरी था ना वो देता था। तो मैंने अपने भाईजान को कहा कि भाईजान मेरा तो दफ्तर का मसला है, छुट्टी नहीं मिलती, तो अगर आप इस्लामाबाद चले जाए ना और NOC वहां से बनवा लें तो बाकी काम फिर आसान हो जाएगा। भाई जानने का बहुत अच्छा, उन्होंने एप्लीकेशन बनाई और इस्लामाबाद चले गए। अच्छा, इस्लामाबाद में उन दिनों में वजारत मजहबी उमूर में हजारों लोग होते थे हज का NOC लेने वाले। दो दिन पहले इतने लोग थे कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, इतने लोग जमा हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, सख्ती बहुत थी। भाई जान वहां गए तो उस दिन वजारत में कोई बंदा आया ही नहीं। वो कहते हैं कि मैं अंदर चला गया और पूछते पूछते कि सेफ्टी साहब का दफ्तर कहाँ है, मैं उसके दफ्तर पे पहुंच गया। अब दफ्तर के सामने जाकर खड़ा तो सेफ्टी साहब का जो खादिम था, पियोन था, वो बाहर निकला और उसने कहा, हाजी साहब आप NOC लेने आए हैं? तो भाईजान ने कहा, हाँ जी NOC लेने आए। कहते बड़ा अच्छा वक्त है, अंदर चले जाओ। अब वजीर लीडर आया बैठे और वो सेफ्टी साहब को कह रहे हैं कि आप अपनी फलां पार्टी के बंदों को NOC देते हैं और हमारे पार्टी के बंदों को नहीं देते। और सेफ्टी कह रहे, नहीं जी मेरे पास तो जो भी आते हैं मैं दे देता हूँ। तो ये अच्छा मौका है, आप चले जाए मिल जाएगा। भाईजान कहते हैं कि मैं दफ्तर के अंदर दाखिल हुआ, उसने सफेदारी देखी तो उसने कहा, हाजी साहब आओ, क्यों आए हो? और जी हमें NOC चाहिए। कहते ले आओ। इन्होंने कागज रखा और उन्होंने साइन कर लिए, लो जी NOC मिल गया। अब भाईजान बाहर निकले तो उन्होंने मुझे फोन किया कि NOC तो मिल गया, अब क्या करना है? मैंने कहा कि अब जो है इसका वीजा लगवाना है सऊदी एम्बेसी से, वो भी एक मसला था। उन दिनों वीजा लेने के लिए लोग अजान फजर की अजानों के वक्त एम्बेसी के बाहर लाइनें लगा लेते थे, कोई 2 से 3 हजार बंदों की लंबी लाइन होती थी और उनमें से कोई 400-500 की दरख्वास्तें वो लेते थे और बाकियों को कहते थे कल वापस आना। 6-6 घंटे लाइन में खड़े होने के बावजूद लोग अपनी एप्लीकेशन जमा नहीं करवा सकते थे, इतना रश था। अब उन दिनों में वीजा लेना तो एक मुश्किल काम था। भाईजान वापस आ गए तो मैंने अपने पासपोर्ट लिए और यहां से चल पड़ा छुट्टी लेके वीजा लेते हैं। अब रास्ते में मुझे ख्याल आया कि इराक का एक काउंसलर था जो हजरत को मिलने आया था चकवाल, वो अंग्रेजी बोलता था, कोई और अंग्रेजी बोलने वाला वहां था नहीं। तो हजरत ने मेरे जिम्मे लगा दिया कि काउंसलर के साथ जरा बैठ के बातचीत करो, इसका दिल लगा रहे। तो मैं खाने में भी शरीक, बातचीत में भी शरीक, तो काउंसलर का मेरे साथ एक ताल्लुक बन गया, तारुफ हो गया। जब वो जाने लगा ना तो मुझे कहता है कि आप कभी इस्लामाबाद नहीं आए? कभी जरूरत होती है तो आता हूँ। कहते कोई भी इस्लामाबाद का काम हो ना तो ये मेरा कार्ड ले लो, मुझे आके बता देना, मैं आपको इस्लामाबाद का काम करवा दूंगा। मैंने वो कार्ड अपनी जेब में रख लिया था। तो मुझे ख्याल आया कि भाई हम अगर एम्बेसी में खुद जाएंगे हज के लिए वीजा लेने तो हमें तो लाइन में भी कोई लगने नहीं देगा और 6 घंटे हम इंतजार में खड़े भी नहीं हो सकते। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम काउंसलर साहब को मिलें और उनको कहें कि वो हमें हज का वीजा लगवा दें? मेरे एक साथी थे, वो गाड़ी चला रहे थे, हम इस्लामाबाद पहुंचे। ये वो दिन था जिस दिन वहां पर एक असलहा खाना था जिसमें ब्लास्टिंग हुई थी और मिसाइल और रॉकेट चले थे। हमें नहीं पता था, बस हम तो इस्लामाबाद में जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इधर एक रॉकेट जमीन के अंदर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, एक पड़ा हुआ है। तो मैं भी हैरान कि ये क्या चीजें हैं जो यहाँ पड़ी हैं। बल्कि मेरे साथी ने तो गाड़ी से बाहर निकल के एक रॉकेट जो जमीन के अंदर लगा हुआ था, फटा नहीं था, उसको जाके हाथ लगा के चेक भी किया। हम बुद्धू, हमें क्या पता कि ये बारूद वाली चीज है। बाद में किसी ने बताया कि जी ओजरी कैंप के अंदर धमाका हुआ है और ये रॉकेट चले हैं और पूरे इस्लामाबाद दिल्ली के अंदर ये आके गिरे हैं। तो खैर हमें अंदाजा हो गया, हम इराक एम्बेसी में पहुंचे, गेट के ऊपर एक गेट कीपर खड़ा था और उसने पूछा जी कैसे आए। हमने कहा भाई ये गार्ड है, कौंसलर हैं यहाँ, हम उनसे मिलने के लिए आए, वो हमारे दोस्त हैं। उसने हमसे मोबाइल वगैरह ले लिया और हमें अंदर जाने दिया। जब हम अंदर गए तो किसी ने पूछा भाई क्यों आए, हमने कहा जी इनसे मिलना है। उनका फलां कमरे में चले जाओ, उसकी सेफ्टी बैठी होगी तो उसको बताओ, वो मुलाकात करवाएगी। हम वहाँ चले गए तो एक इराकी लड़की उसकी सेफ्टी थी, वो बैठी हुई थी। उसने मुझे देखा तो पूछा आप क्यों आए, मैंने कहा जी ये मेरे दोस्त हैं और मैं उनसे मुलाकात के लिए आया हूँ। वो कहने लगी जी कि इनकी तो कल ट्रांसफर हो गई है, तब्दीली हो गई है और यहाँ से चले गए और मैं ही उनकी सेफ्टी हूँ, लेकिन चूंकि वो आपके दोस्त हैं तो आप ठहरे, मैं आपकी बात सुनती हूँ, आप मुझे 5 मिनट दें और आप फलां कमरे में इंतजार करें। तो करीब एक कमरा था जो लाइब्रेरी थी, दिन के 10-11 बजे का वक्त था। मैं वो लाइब्रेरी में चला गया। अब मुझे जहन में ख्याल आया कि मैं यहाँ पर एप्लीकेशन दे रहा हूँ हज के लिए, अल्लाह के हुजूर की एप्लीकेशन दूँ ना, तो क्यों ना मैं चाश के नफल यहीं पढ़ लूँ। वजू था, मैंने अपना रुमाल बिछाया, अल्लाह ने मुसल्ला साथ दिया होता है मैं, और मैंने वहाँ पे 2 रकत पढ़ने शुरू कर दिए। अब जब मैं नमाज पढ़ रहा था ना, उस वक्त वो जो सेक्टरी लड़की थी वो आई मुझे देखने के लिए कि ये बंदा क्या कर रहा है। तो उसने देखा नफल पढ़ रहा हूँ, वो बड़ी हैरान हुई। काली दाढ़ी थी, यंग जिस्म था उस वक्त, तो हैरान हुई कि इतना यंग लड़का दिन के इस वक्त में इबादत कर रहा है। तो अल्लाह ने उसके दिल में एक नरम गोशा पैदा कर दिया और उसने नियत कर ली कि ये जिस काम के लिए आया है इस काम में मैं इसकी हेल्प करूँगी। खैर जब मैंने नमाज पढ़ ली, अल्लाह से दुआ मांगी और दुआ मांग के मैं उसके पास गया। अब उसके पास बात करते हुए अजीब, उसकी तरफ तो मैं देख नहीं रहा था, देख तो मैं नीचे रहा था, बात उसे कर रहा था, वो इसकी आदी नहीं थी। ये लोग तो आंखों में आंखें मिला के बात करने के आदी होते हैं। अब मैं देख के नीचे रहा हूँ, बात उसे कर रहा हूँ, तो इससे भी बड़ी हैरान हुई। मुझे कहती है आप क्यों आए हैं, मकसद क्या है। मैंने कहा जी मकसद है सऊदी अरब का वीज़ा हासिल करना, और हम आए थे कि हम उनको कहेंगे वो वीज़ा लगवा देंगे, मगर आप तो बता रही हैं कि वो तब्दील हो गए और चले गए और नया बंदा अभी तक नहीं आया। उसने कहा नया बंदा नहीं आया, लेकिन आपके वीजे का काम तो मैं भी करवा दूंगी, वो तो कोई मसला नहीं है मेरे लिए, आप मुझे पासपोर्ट दे दें। तो जी मैंने तीनों पासपोर्ट उसको दे दिए और पूछा कि वीज़ा कब तक लग जाएगा। उसने कहा आज मैं भेजूँगी और परसों वीज़ा आ जाएगा, तो परसों की बजाय उससे अगले दिन आप आके मुझसे पासपोर्ट ले जाएंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने उससे दोबारा पूछा वीज़ा लग जाएगा। उसने कहा कि हम एम्बेसी की डाक भेजते हैं ना, तो ये कोई आम हाजी की डाक नहीं होती, ये एम्बेसी की डाक होती है, ये पासपोर्ट जाएंगे और पक्का वीज़ा लगेगा और परसों आ जाएगा, आप उससे अगले दिन आके मुझसे वीज़ा ले जाएंगे। खैर मुझे तसल्ली हो गई, इंशाल्लाह अल्लाह ताला वीजे का इंतजाम कर देंगे। हम लोग फिर वापस आ गए। अब मैं वापस आया तो मुझे फिक्र लगी कि वीज़ा तो लग जाएगा, टिकट भी बनवानी है और आगे हज का भी खर्चा है, और मेरे पास तो पैसे नहीं थे। मेरे पास तो जितने पैसे थे मैंने सारे के सारे हजरत की खिदमत में पेश कर दिए थे। अब मैं सोच में पड़ गया कि क्या करूं। तो मेरे एक दोस्त थे इंजीनियर थे, उनका नाम था शमशीर साहब, वो जद्दा में चीफ इंजीनियर थे। मैंने उनको फ़ोन मिलाया और मैंने कहा कि शमशीर साहब मैं हज का वीज़ा लगवा रहा हूं, लेकिन मेरे पास इस वक्त खर्चा नहीं है, तो जद्दा तो मैं पहुंच जाऊंगा। आगे का जितना खर्चा होगा वो आप कर देना, फिर जब मुझे पैसे मिलेंगे तनख्वाह के तो मैं आपको वापस कर दूंगा। उसने कहा फिक्र ना करें, आप आए सही, मुझे डिटेल बता दें कि आपने किस दिन आने, मैं एयरपोर्ट पे आऊँगा और आपकी फीसें वगैरह सारी जमा करवा के आपको बाहर निकालूंगा। तो मुझे थोड़ा और इत्मीनान हो गया कि चलो एक बंदा है जो खर्चा करेगा और फिर मैं इसको कर्जा वापस लौटा दूंगा। अब दिली तौर पर मैं बहुत मुतमिन था कि अल्लाह ने इंतजाम कर दिए और मैं हजरत के साथ हज पे जा रहा हूँ। अल्लाह की शान देखे कि उससे अगले दिन मैं दफ्तर में गया तो दफ्तर में पता चला कि कारखाने वालों ने बोनस दिए हैं। बोनस का मतलब तनख्वाह इनाम के तौर पर दी जाती है और उस साल उन्होंने 12 बोनस दिए, यानी 12 तनख्वाहें इकट्ठी दे दी। आप यूँ समझें कि पूरे साल की तनख्वाहें इकट्ठी मिल गई तनख्वाह के अलावा, तो काफ़ी सारे पैसे बन जाते थे। अब मैंने वो पैसे निकलवाए तो मेरी एक जेब में नहीं आते थे, मैंने कुछ एक जेब में डाले, कुछ दूसरी जेब में डाले और मैं घर आया और मैंने आके अम्मी मुबारक को अल्लाह ने इंतजाम कर दिया, अम्मी ने दुआ दी और हम इत्मीनान के साथ वहाँ से इस्लामाबाद चल पड़े। लेकिन मेरे दिल में एक परेशानी थी कि हमने वीज़ा तो लगवा लिया और ख़र्चे का इंतज़ाम भी हो गया, टिकट तो नहीं बनवाई और फ्लाइटें सारी फुल बुक थी, फुल बुक थी। खैर हमारे एक साथी थे, उनके मामू का घर था इस्लामाबाद में, हम रात को वहाँ ठहरे, खाना खाया तो उनके मामू ने मुझसे बातचीत की, उसने कहा जी कि आपका हज का प्रोग्राम है। मैंने उन्हें कहा हज का प्रोग्राम तो है लेकिन टिकट आजकल नहीं मिल रही, फ्लाइटें बुक हैं, तो हमारे लिए टिकट बनवाना एक मसला है। अच्छा, वो मामू जो था ना वो टेलीफोन डिपार्टमेंट में जनरल मैनेजर था, ये PTCL जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तान टेलीफोन जो होती है इसका, वो जनरल मैनेजर था। वो खाना खाते हुए उसने मेरी बात सुनी, कहते हैं टिकट तो आपको मैं बनवा लूँगा। मैंने कहा मेरे साथी तो बता रहे थे कि आज आखिरी फ्लाइट चली गई। उसने कहा अच्छा बात करते हैं। लो जी अगले दिन उसने टिकट के लिए बात की, हर बंदे ने कहा जी कि आखिरी फ्लाइट भी चली गई है, अब तो कोई फ्लाइट ही नहीं पीछे। उसने एयरपोर्ट पे फ़ोन किया तो एयरपोर्ट पे एक टेलीफोन डिपार्टमेंट वालों का कमरा होता है, वो रहते ही वहीं है ड्यूटी पे, ताकि अगर एयरपोर्ट का कोई फ़ोन ख़राब हो तो उसको फ़ौरन ठीक कर दिया जाए। वहाँ एक सुपरवाइज़र था, GM ने उसको फ़ोन किया और उसको कहा कि भाई जो यहाँ का इंचार्ज है ना एयरपोर्ट का, उसके पास जाओ और कहो कि मुझे 3 टिकटें बनवानी है, बना के लो। तो मैनेजर ने कहा जी कि हमारे पास तो कोई फ्लाइट ही नहीं चली गई, अब तो बन ही नहीं सकती। तो उसने कहा अच्छा, अगर वो कहते हैं ना कि टिकट कोई नहीं तो इनके सारे टेलीफोन लाइनें ख़राब कर दो, और ये तुम्हें कहेंगे जी कि टेलीफोन लाइनें ख़राब हैं तो आप कहना जी GM से बात करें। ये ब्यूरोक्रेट भी अजीब लोग होते हैं। चुनाचे वो सुपरवाइज़र थोड़ी देर में गया, उसने जाके तारे खोल दी, कुछ आगे पीछे कर दिया। अब एयरपोर्ट पे तो शोर मच गया जी के सारे फ़ोन ख़राब हो गए। उस ज़माने में सेल फोन नहीं होते थे, सिर्फ लाइन के फ़ोन होते थे। अब एयरपोर्ट की सारी लाइनों का बंद हो जाना तो एक बड़ा मसला था। थोड़ी देर बाद मैनेजर का फ़ोन आया GM को कि सर हमारी सारी लाइनें ख़राब हो गई हैं और निज़ाम दरहम बरहम हो गया है, तो आप हमारी लाइनें ठीक करवा दें। GM साहब ने कहा मुझे 3 टिकटें चाहिए, मुझे 3 टिकटें बना दें, आपकी 3 लाइनें ठीक करवा दूंगा। उसने कहा जी कि टिकटें तो नहीं मिल सकती। उसने कहा फिर लाइनें भी ठीक नहीं हो सकती। یہ میرے سامنے گفتگو ہو رہی تھی فون پہ. لو جی تھوڑی دیر کے بعد وہ جو ایئرپورٹ کا انچارج تھا اس نے فون کیا کہ سر میرے ذہن میں ایک ترتیب آئی ہے کہ آخری فلائٹ تو ہے چلی گئی لیکن کوئی 200-300 بندے ہیں جن کے پاس ویزے لگے ہوئے ہیں اور وہ ٹکٹیں بنوانے کے لیے آگے پیچھے پھر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ یہ حاجی لوگ دھکے کھائیں ہم کیوں نہ ایکسٹرا فلائٹ چلا دیں, حاجیوں کا بھی کام ہو جائے گا اور کمپنی کا بھی فائدہ ہو جائے گا. تو میں پرائم منسٹر کے پاس جا رہا ہوں ایکسٹرا فلائٹ کی اجازت دینے کے لیے. لو جی شاید ضیاء الحق کا دور تھا, لگتا ایسے ہی ہے. تو وہ گیا اور اس نے جا کے ضیاء الحق کو بتایا کہ فلائٹیں تو چلی گئیں لیکن 200-300 حاجی ہیں جن کے پاس ویزے لگے ہوئے ہیں, ٹکٹیں نہیں ان کے پاس بنی ہوئی اور وہ ٹکٹوں کے لیے ادھر ادھر بیچارے پھرتے رہے ہیں. تو اگر آپ ایکسٹرا فلائٹ کی اجازت دے دیں تو ان کو سیٹیں مل جائیں گی اور ہمارا نفع ہو جائے گا. اس نے اجازت دے دی تو اس نے ہم 3 بندوں کی ٹکٹیں سب سے پہلے بنا دی اور فون کیا, جی ایم صاحب میں نے 3 بندوں کی ٹکٹیں بنا دی ہیں, اب آپ ہمارا فون ٹھیک کروا دیں. تو جی ایم صاحب مسکرائے, مجھے کہنے لگے اب اس کا دماغ ٹھیک ہوا ہے, اب میں اس کی لائنیں ٹھیک کروا دوں گا. تو یوں اللہ نے ہماری ٹکٹیں بھی بنوا دی. خیر دوسرے دن پھر ہم جہاز پہ روانہ ہوئے. اللہ کی شان کے جب ہم جدہ جا کے اترے نا تو جہاں حاجی جاتے تھے وہاں آگے جنگلہ لگا ہوا تھا اور جنگلے کے باہر مقامی لوگ کھڑے ہوتے تھے. تو میرا وہ دوست جو تھا نا شمشیر صاحب جو چیف انجینئر تھے وہ بھی وہاں کھڑا تھا, مجھے دیکھ کے بڑا خوش ہوا اور مجھے بار بار کہتا تھا, اپنی جیب کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ بھائی میں ریال لے کے آیا ہوں اور میں تیری ساری پیمنٹ کر دوں گا. تو میں نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا اور میں نے اپنی جو ہے نا وہ ایک پرسہ تھا جو یہاں احرام کی حالت میں باندھتے ہیں, میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی میرے پاس پیسے ہیں میں پیمنٹ کر دوں گا. اس طرح ہم نے حج کی وہاں پر پوری پیمنٹ کی اور اللہ نے ہمیں حج کے لیے قبول کر لیا. پھر حرم میں جا کے حضرت سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے پھر سمجھایا کہ طواف کیسے کرتے ہیں, صحیح کیسے کرتے ہیں, فلاں کیسے کرتے ہیں, یہ سارا کچھ. الحمدللہ یہ زندگی کا پہلا حج تھا اور میں سمجھتا ہوں اس میں جہاں والدہ کی دعائیں شامل تھیں وہاں میرے شیخ کی بھی دعائیں شامل تھیں, اور یہ شیخ کی دعائیں تھیں جس نے میرے لیے کام آسان کر دیا. پھر حضرت کی میت میں مدینہ طیبہ جانا ہوا اور حضرت نے مدینہ طیبہ میں روضہ انور پہ خود ساتھ لے کر گئے اور پیش فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اپنے اکابر کی دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اس میں میرا اپنا عمل کوئی نہیں ہے, 100% پکی بات ہے, یا شیخ کی دعائیں ہیں یا ماں کی دعائیں ہیں, کسی کی دعا لگی جو اللہ آسانی فرماتا ہے, ورنہ ہم جیسے نالائقوں کے لیے یہ کام کوئی آسان نہیں ہے. www.dasqur'an.com